कौन अल्लाह जिसका तज़किरा आ गया है। कुल मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, कह दीजिए कौन तुमको रिस्क देता है आसमानों ज़मीन से। जवाब दे, ये समात और बिनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में? सब एक आवाज़ से बोले अल्लाह। यकीन है कि नहीं? है यकीन। कौन बेजान से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता? कौन इस नज़्म आलम की तदबीर कर रहा है? वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो फिर तुम हकीकत के खिलाफ चलने से परहेज़ नहीं करते? तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है। फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया? आखिर ये तुम किधर फिराए जा रहे हो? ऐ नबी देखो इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादिक हो गई। क्या? कि वो मान कर न देंगे। इट्स बिग रियलिटी। जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा, जो मर्जी कर लीजिए वो नहीं मानेंगे। मक्का वाले नबी की बात ना मान सके, आपकी मेरी बात कौन मानेगा? ऐसे ही स्टबन लोगों का अंजाम अल्लाह ताला यहाँ बताते हैं। कुल हल मिन शुरकाइकुम, इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो तख्लीक की इब्तदा भी करता हो फिर इसको दोहरा सके? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो तख्लीक की इब्तदा भी करता है और इसको दोहराएगा भी। फिर ये तुम किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? आज भी देख लीजिए ऐसे ही है। दुनिया का निज़ाम कौन चलाता है? गर्मी किसके हाथ में है? सर्दी किसके हाथ में है? तो फिर अल्लाह ताला आपको मुझे यहाँ दिखा रहा है कि जिस अल्लाह के हाथ में सब कुछ है ना, उसके हाथों में खुद को दे दो। अपने आप को दुनिया वालों के हाथ में कठपुतली ना बनाओ। लोग जो चाहें वो करो, तुम भी कर लो। वो कहते हैं स्लीव्स अप, तुम कहते हो स्लीव्स गई। ट्राउज़र अप, ट्राउज़र अप, वो खेल खेलते हैं ना लोग, सुना वह कभी? हैंड्स अप, हैंड्स अप। आज आप देखिए दुनिया वालों के इशारों पे चलते हैं। कोई कुछ कह दे हम करने को तैयार, लेकिन अल्लाह जिसने ये सब कुछ किया और जो करना चाहता है, क्या मैं और आप उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं? ये हम सबको सोचने का नुस्खा सिखा रही है ये सूरत। फिर एक और तदब्बुर की बात, कुलिल्लाहु यब्दउल खल्का, कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो तख्लीक की इब्तिदा भी करता है और इसको दोहराएगा। फिर तुम किस उल्टी राह पर चलाए जाते हो? इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो? कोई भी नहीं था, वो तो और ज़्यादा हक से दूर करते थे। कुलिल्लाहु यहदी लिलहक या फमन यहदी लिलहक, कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है। सच के नहीं? इस वक्त अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं तो हिदायत समझ आ रही है ना। कोई दुनिया की ताकत आपको मुझे अल्लाह वाला बनने की दावत नहीं देगी इस किताब से पढ़कर। फिर बतलाओ जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो इसका ज़्यादा हक रखता है कि उसकी पैरवी की जाए या वो जो खुद राह नहीं पाता? इल्ला ये कि उसकी रहनुमाई की जाए। आखिर तुम्हें क्या हो गया? कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो? क्या बताया जा रहा है कि हिदायत देना अल्लाह का काम है, और जब इस किताब हिदायत को ज़िंदगी में ले आते हैं ना, उसके बाद फिर अल्लाह सुभान व तआला हमारे लिए रास्ते खुलता ही जाता है। आज बंद कीजिए इस किताब को। मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इन 11 पारों ने जो ईमान दिया है ना, सिर्फ एक पारा बंद कर दीजिए, किसी मसरूफियत में चले जाएँ, ईद की तैयारी करने चले जाएँ, आप देखेंगे आपके दिल से हिदायत की तलब कम हो जाएगी। जो लज्जत मिल रही है ना, पहले इसमें कमी होगी। और एकदम तो नहीं शैतान कहेगा कि छोड़ दो, बाद में सुन लेंगे, घर से सुन लेंगे। पहले घर का नाम लेता है, फिर घर में हालात नहीं तो कहते शाम को रीप्ले में सुनेंगे, फिर रीप्ले के वक्त नहीं नहीं शाम, जो आधी रात को चलते हैं ना, जिस वक्त सब सोए थे वो सुनेंगे, तो उस वक्त थक के सो जाएंगे। जो गई सो गई। तो इस किताब हिदायत को नेमत समझेंगे हम, ताकि मैं और आप इस रास्ते पर चलते ही जाएँ। फरमाए वमा यत्तबी अक्सर हम इल्लज़न्ना, इंसानों में अक्सर किस चीज़ के पीछे चल रहे हैं? इसका जवाब है हकीकत है कि इनमें से अक्सर लोग महज क्यास और गुमान के पीछे चले जा रहे हैं। हालांकि गुमान हक की ज़रूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इसको खूब जानता है। देखिए आपको यहाँ से अगर पाकिस्तान जाना है, कौन सी टिकट बुक करवाते हैं, चांस की या कन्फर्म? कन्फर्म। दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं कन्फर्म टिकट, आखरत का और जन्नत का टिकट क्या है? चांस। लेट सी व्हाट विल हैपन, देखना जन्नत मिली जानी है। अल्लाह ताला यहाँ ये सिखा रहे हैं, इतनी बड़ी हकीकत को सिर्फ एग्जम्पशन पे रखा हुआ है। एज्यूम करके बैठे हो जन्नत में जाएंगे, ना गए तो क्या होगा? और देखना अल्लाह ने रहम करना है भाई, अगर ना किया तो क्या होगा? कोई क्लेम फॉर्म है तुम्हारे पास? और ये कुरान सबसे बड़ा क्लेम फॉर्म है। ये तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह पढ़ते थे, सुनते थे, सुनाते थे, नहीं ठीक हो सके, अमल नहीं हुआ अल्लाह ताला, लेकिन लाइन में लगे हुए थे, फिर तो बात बनती है। और लाइन में खड़े हो किसी और की, اور چاہے کھڑکی ہدایت کی کھل جائے یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیاس کو چھوڑ کر حقیقت پسند بنو. اور آگے پھر دیکھیے آپ کے میرے پیارے سے قرآن کا تذکرہ آ گیا, وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے, یعنی کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. تو آپ بھی اس کی گواہی دیں گے نا, اتنے موتیوں جیسے خوبصورت لفظ کسی انسان کے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود لکھ لیا؟ کہو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی لکھ کر دکھا دو. ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو, کوئی فورم بلا لو, دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں چلے جاؤ اور اس جیسا نظام پیدا کر کے دکھاؤ جو اس کتاب نے دیا ہے. نہیں کر سکو گے. اصل یہ کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی, جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا, اس کو انہوں نے محض اٹکل پچو سمجھ کر چھٹلا دیا. ان سے پہلے کے لوگ بھی چھٹلا چکے, پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے, اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. دعا کر لیں جلدی سے اپنے لیے کہ اللہ میرا حال ان دانوں کی طرح نہ ہو کہ جو بیج زمین میں پڑنے کے بعد بھی نہ ہوگے. میں اس قرآن کے پانی سے ہدایت کا بیج لے کر اٹھوں جو واقعی پھر میری زندگی میں اتنا خوبصورت سرسبز و شاداب درخت بن کے مہکے کہ میں اپنی زندگی کو تیری مرضی کی بنا سکوں. اگر یہ تجھے چھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے, جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یہ جرات مانگی ہے. جب لوگ آپ کی دعوت پہ اللہ کی بات نہیں مانتے نا, تو آپ ان کی دعوت پہ گناہ کی بات ماننا چھوڑ دیں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں, مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں, مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتلائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. از اٹ ٹرو, یہ سچ ہے نا؟ آپ ذرا سوچیے کیا ظلم ہے لوگوں کا. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں, اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی ایسی مخصوص ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. کتنی بڑی ریالٹی ہے. ذرا اپنے پیچھے تو دیکھیے, اپنی زندگی کو سوچیں. کہاں گئی زندگی؟ بچپن, جوانی, ڈھلتی جوانی, آتا بڑھاپا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت دیر لگی ہے یہ وقت گزرنے میں؟ ایسے نہیں گزر گیا. ابھی تو دنیا میں ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا تھا کہ جانے کا وقت آ گیا. لوگ کہتے ہیں میں اپنے شوہر کو بہت جانتی ہوں, مجھے اپنے بچوں کے دل کی باتیں بھی پتہ ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا وہ ریئیکٹ کریں گے, آپ کہیں گے یہ بول رہے ہیں, ایسے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. آپ میں صرف انٹروڈیوسڈ ہوئے اس دنیا میں ابھی, اور ہمارے جانے کا وقت آ جائے گا. اتنی چھوٹی ہے یہ دنیا. اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت کھاٹے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز براہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں, ان کا کچھ حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھلا دیں یا اس سے پہلے تجھ کو ہی اٹھا لے. بہرحال ان کو آنا ہماری ہی طرف ہے, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. نبی کو بتایا جا رہا ہے جو آپ کے سامنے نہیں مان رہے نا, ہو سکتا ہے آپ کے بعد مان جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ بعد بھی نہ مانے. آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے, آپ کے بعد کچھ کو ہدایت ملے گی, کچھ کو نہیں ملے گی. تو میں اور آپ دعا کریں کہ اللہ جن کو ہمارے سامنے ہدایت نہیں ملی ان کو ہمارے بعد مل جائے, جن کو ہمارے ذریعے سے نہیں ملی ان کو کسی اور کے ذریعے سے مل جائے, لیکن مل جائے. آپ دیکھیں جس کو دین سے محبت ہوتی ہے نا, وہ کہتا ہے اچھا کسی کی بھی اس کو بات سنا دو اس کو ہدایت مل جائے, اور دوسرا کہتا ہے نہیں میری بات سن کے ماننا کیونکہ میرا صدقہ جاریہ بنو گے. ڈاکٹر ہے نا, اس کو مریض سے رحم ہے, اس سے محبت ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اسپرین دوں گا تاکہ اس کا درد ٹھیک ہو, اور میں نہ ہوا تو بالکل نہ دینا, اس کو درد سے تڑپنے دو. بالکل اسی طرح آج کے دور میں اگر مجھے آپ کو سچی محبت ہے نا دین سے, تو ہم لوگوں کی انگلیاں پکڑ پکڑ کر ان کو ہدایت کے راستے پہ لے آئیں گے, چاہے ہم ان سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں. کیوں؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحت مل جائے. और दिल से तासुब निकल जाता है ना, तो आप दूसरों को ज़रूर दीन की दावत देते हैं, चाहे आप ख़ुद फ़ायदा लेते हैं कि नहीं लेते। और अल्लाह ताला मुझे आपको इस चीज़ की तड़प लगा दे। फिर इसके बाद फरमाया, हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो इसका फ़ैसला इंसाफ के साथ कर दिया जाता है और इस पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। और वो फ़ैसला क्या होता है कि जिन्होंने झुटलाया उनको तबाह कर दिया जाए और जिन्होंने रसूल की बात मानी उनको बचा लिया जाए। कहते हैं अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी। देखिए कितने ना समझ है, खुद कह रहे हैं कि हम पे अजाब कब आएगा। कहो मेरे इख्तियार में खुद अपना नफ़ा और ज़र्र भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पे मौकूफ़ है। हर उम्मत के लिए एक मोहलत की मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की देर या जल्दी नहीं होती। इनसे कहो कभी तुमने ये सोचा, आप और मैं भी सोचे क्या, कि अगर अचानक अल्लाह का अजाब रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो, आ सकता कि नहीं। आखिर ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मुजरिम जल्दी मचाएं? क्या जब वो तुम पर आ पड़े इसी वक्त तुम इसे मानोगे? अब बचना चाहते हो हालांकि तुम खुद ही इसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा, अब हमेशा के अजाब का मज़ा चखो, जो कुछ तुम कमाते रहे हो इसकी पादाश के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है। इंतज़ार करो फिर जब तुम्हारी पकड़ होगी। और आप ज़रा इन सारी आयतों को नबी सल्लम और मक्का वालों के सिनेरियो में भी समझिए ना, कितना प्रेशर था अल्लाह के नबी पे। हम कहते हमसे बात नहीं बर्दाश्त होती, लोगों की आंखों में जो हमारे लिए गैरियत आती है वो नहीं बर्दाश्त होती, तो आप देखिए अल्लाह के नबी के असाब पे कितना बोझ पड़ता था जब लोग नहीं मानते थे। लेकिन अल्लाह तसल्लियों पे तसल्लियाँ दे रहे हैं। फिर पूछते हैं, क्या वाकई ये सच है जो तुम कह रहे हो? कहो मेरे रब की कसम ये बिल्कुल सच है, और तुम तो इतना बलबूता भी नहीं रखते कि इसको ज़खूर में आने से रोक दो। अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया है रुए ज़मीन की दौलत भी हो तो इस अजाब से बचने के लिए वो इसे फ़दिये में देने पर आमादा हो जाएगा। जब ये लोग इस अजाब को देख लेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे, मगर इनके दरमियान पूरे इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दिया जाएगा। सोचिए ज़रा, कोई जुल्म इन पर ना होगा। सुनो, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है, इसको महसूस करें। क्या कुछ है आसमानों में? बादल, सूरज, चांद, सितारे, फरिश्ते। ज़मीन में क्या कुछ है? खजाने भरे पड़े हैं। किसका ये सब? तो क्या उसके लिए मरूबियत है? इम्प्रेस हुए? किसी का बड़ा घर देखे होते, हाँ, बड़ी गाड़ी देखे, ऐसे लगता है वो रोड पे नहीं चली आपके दिल पे उतरी है। ऐसे लगता है हाय फरारी, क्या हो गया, फरारी जरारी क्या भी कह लें। आपके बच्चों को नाम पता होते हैं आपको पता भी नहीं होते है कि नहीं। ये सिर्फ दुनिया का धोखा है, ये सिर्फ बबल्स हैं, एक बुलबुल है, जब ख़त्म होगा तो अंदर से हकीकत निकलेगी। तो इस दुनिया को इसकी असल पे रखो, ये मैसेज है नायतों का। सुन रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है मगर अक्सर इंसान जानते नहीं। वही ज़िंदगी बख्शता है, वही मौत देता है, और इसी की तरफ तुम सबको पलटना है। दो लोगों के बारे में मुझे खबर मिली कि रमज़ान से सिर्फ एक दिन पहले उनकी डेथ हुई। खींच खूँच के ज़रा कुछ घंटे डॉक्टर उनकी उम्र बढ़ा लेते, रमज़ान में मौत हो जाती, क्या बड़ी बात थी? नहीं, किसी को नहीं पता कब मौत आएगी। जो दुनिया से जा रहे हैं लोन सब की बख्शिश करते हैं। अब ये वो आयत है जो आपके इस स्कूल का लोगो भी है। आपने अगर नूरुल कुरान का बैनर कभी गौर से देखा हो तो ये आयत उस पर लिखी होती है, और इसी पे वो लेक्चर है जो बहुत सारे लोगों के दिल के ताले खोल गया अल्लाह के हुक्म से, कुरान मेरे दिल की बहार। नए लोगों को सुनवाने वाला लेक्चर है, जिनको आप कुरान से जोड़ना चाहते हैं ना उनको इन आयतों से जोड़िए। आइए देखते हैं। या अय्युहन्नास कद जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। आ गई है, ये वो चीज़ है जो दिलों के इमराज की शिफा है। कोई हार्ट पेशेंट बैठा हुआ इधर जिसका दिल बीमार है? ये किताब उसका इलाज करती है कुफर की, निफाक की, हुब्बे दुनिया की, नफ़रतों की, बुग़्ज़ की बीमारियाँ। कितनी बीमारियाँ लगी हुई इन दिलों को, ये कुरान आकर ऐसा प्यारा इलाज करता है कि कुछ याद नहीं रहता किससे नाराज़ थी, किसने दिल तोड़ा, किसकी बात बुरी लगी, किससे मेरी केमिस्ट्री नहीं मिलती, किससे मेरा माइंड लेवल नहीं मिलता, सब भुला देता है, सब एक लगने लगते हैं। और जो इसको कबूल कर ले उनके लिए रहनुमाई और रहमत है। ये गाइड बुक है, ये रोड मैप टू जन्ना, ये आपको सिखाता है कि जन्नत का सफ़र रास्ता कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ क्या खाओगे क्या पियोगे। और आज हमने इसको बरकत की किताब बना दिया। ए नबी कहो कि ये अल्लाह का फजल और इसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ इसने भेजी। कितने लोगों को ये कुरान अल्लाह का फजल दिखता है, आप इमेजिन तो करें। मेरा तो दिल बंद होने लगता है सोच के कि अगर कुरान ना होता, बल्कि अक्सर दिल सोच के उदास होता है कि जन्नत में कुरान नहीं होगा, हम क्या पढ़े पढ़ाएंगे, जन्नत में इस इल्म की महफिलें नहीं सजेंगी, हम इस कुरान के लिए घंटों गौर व फिक्र नहीं कर सकेंगे, दिल उदास हो जाता है। पर वहाँ फुर्सत किसको होगी। अल्लाह अकबर। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए, मनाएं ज़रा खुशी, अपने दिल को टटोलें, खुश है इस कुरान से आपका दिल। ये इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। क्या क्या समेटा हुआ घर में, ज़रा इमेजिनेशन में तो लाएं। कपड़े, जूते, क्रॉकरी, डिनर सेट, वॉशिंग मशीन, बाकी आप बोल दें, लंबी लिस्ट है। कोई कंटेनर जिसमें सामान भर के जाता आता है जब घर शिफ्ट करते हैं, जिसको समेटते समाटते संभालते संभालते नमाजें भी कज़ा होती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। यंग बच्चियाँ कुछ और चीज़ें जमा करती हैं, कल के दौर में लोग तितलियाँ जमा करते थे, ऑटोग्राफ जमा करते थे, आज फेसबुक पे लाइक्स को जमा करते हैं, ट्विटर्स को जमा करते हैं। कितनों ने मुझे लाइक किया, मैं कितनों की दिल की रानी हूँ। अपने प्रोफाइल की तस्वीरें बदलते रहते हैं, अपने सेलफोन बदलते हैं, फिर फ़ोन ना बदलें तो कवर बदलते हैं, कवर ना बदले तो उसके ऊपर कोई मोती लगाते हैं। इन्हीं खेल खिलौनों में हम गुड़िया गुड्डे का खेल खेल रहे हैं। और इतने में इतनी प्यारी किताब आपके सामने खुलती है जो सब छुपा लेती है और कहती मुझे पढ़ो, मुझे देखो, मैं हूँ तुम्हारी बिलवेट, मुझे अपनी हॉबी बनाओ, मुझे अपना प्रोफेशन बनाओ, मेरे से बातें करो, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मेरे से दिल की बातें करो, मैं तुम्हारे दुख में रोऊंगी, मैं तुम्हारी खुशियों में हंसूंगी, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी, तुम्हारी दोस्तें हर वक्त थोड़ी तुम्हारे साथ रहती हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर इस किताब के साथ जो आपका ताल्लुक बनता है ना, उसको लफ्ज़ों में आप नहीं अभी समेट सकते। और ये कब होगा, जब ये सीने में आएगी। अभी तो सफ़ों से देख के पढ़ रहे हैं ना, जब आप अपने दिल में इन आयतों को महफूज करेंगे तर्जमे की सूरत में। ज़रा दुखी हुए, कुरान की वो आयतें खुल जाएंगी जिसमें दुखी लोगों की बातें, कभी मूसा के दुख, कभी ईसा के दुख, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु के दुख। फिर आप कहते हैं चलो उनको भी तो सताया गया, मुझे कोई कह ले कोई, तो क्या बड़ी बात है। बड़े प्यार से अपने लिए कुरान का साथ मांगे कि अल्लाह मैंने कुरान का लफ्ज़ी तर्जमा याद करना है, क्योंकि ये किताब आपको समझ आती है ना, फिर वो दोस्त बनती है जो आपका दुख सुख समझती है। और अल्लाह ताला हम इसके लिए वक्त लगाने वाला बना दे। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। ए नबी इनसे कहो, तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा है, इससे तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया। इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाज़त दी है, यानी हलाल और हराम तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं सेट कर सकते। अमल अल्लाह ही दफ्तरून, तो क्या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो। जो अल्लाह पर झूठ बांधते इनका क्या गुमान है, क़यामत के रोज़ इनके साथ क्या मामला किया जाएगा। अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नज़र रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते। सच, अल्लाह ताला में कैसे पुरसकून करके बिठा देता है इस किताब के लिए। हो सकता है कि अगर अल्लाह की मेहरबानी ना होती तो हम इस वक्त भी किसी काम में लगे होते। अल्लाह ताला हमें शुक्र वाला बना दे। ऐ नबी, तुम जिस हाल में भी होते और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो, और लोगों यानी नबी के साथ अब लोगों को भी कहा गया, तुम्हारा क्या हाल है। तुम भी जो कुछ करते हो, इन सब के दौरान हम तुमको देखते रहते हैं कि डी ट्रैक तो नहीं हो गए, कोई और पेज तो नहीं खोल लिया, कोई और विंडो तो नहीं खुल गई, कुछ और मैसेज तो नहीं चेक करने लग गए। हम सब देखते होते हैं, कोई ज़रा बराबर चीज़ आसमान और ज़मीन में ऐसी नहीं, ना छोटी ना बड़ी, जो तेरे रब की नज़र से पोशीदा हो। तो फिर ये छोटा सा धड़कता हुआ दिल उससे कैसे छुपा हो सकता है? आप उससे प्यार करें उसको पता ही ना चले, ये नहीं हो सकता। और एक साफ दफ्तर में दर्ज ना हो, सुनो जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा का रवैया अख्तियार किया, इनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं। दुनिया आखिरत दोनों ज़िंदगियों में इनके लिए बशारत ही बशारत है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। ये है औलिया कराम के, जिनकी ज़िंदगी में ना गम ना खौफ। अल्लाह हमें अपना वली बना दे। ए नबी, जो बातें ये लोग तुझ पर बनाते हैं वो तुझे कभी दुखी ना करें। इज्जत सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में, वो सब कुछ सुनता और जानता है। ऐसे लगता है आपने कोई अच्छी सी नीयत की और फिर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, ये क्या बन गई हो? आप कहते हैं मेरी तो बेइज्जती हो गई, इज्जत चली गई। का इज्जत इन चीज़ों से नहीं जाती, अल्लाह के हाथ में इज्जत। अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, कह दीजिए, आगाह हो जाओ कि आसमान के बसने वाले हों या ज़मीन के सब अल्लाह के ममलूक हैं। 3 सेकंड ज़रा इस जुमले पे गौर करें, आप देखेंगे आपकी नज़र में लोग छोटे छोटे बोने बन जाएंगे। इतने 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 छोटे छोटे, वो जैसे आप जूम इन जूम आउट करते हैं ना, इतनी बड़ी चीज़ छोटी छोटी हो गई, इतनी एक नुक्ता बन जाती है आपकी स्क्रीन पर। हमने लोगों को बड़ा बनाया हुआ है क्योंकि हमने अल्लाह की बड़ाई को बुरा नहीं समझा। तो लगता है ये सब छोटे हैं, क्यों डरते हो इनसे? और जो लोग अल्लाह के सिवा कुछ अपने खुद साख्ता शरीकों को पुकार रहे हैं, वो निरे वहमो गुमान के पैरोकार हैं और महज क्या सराइयाँ करते हैं। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि इसमें सुकून हासिल करो, और दिन को रोशन बनाया। इसमें निशानियाँ इन लोगों के लिए जो खुले कानों से पैगंबर की दावत को सुनते हैं। कितना सुकून होता है रात के अंधेरे में, थोड़ी देर खड़े होकर खिड़की में ज़रा बाहर आसमान को देखा करें। आपको तो वैसे ही दिखेगा सब कुछ, अंधेरा तो बढ़ता ही नहीं है। उस वक्त आप अल्लाह से बात करें, देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा। लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया, सुबहान अल्लाह, वो तो बेनियाज है। आसमानों ज़मीन में जो कुछ है वो सब इसकी मिल्क में है। तुम्हारे पास इस कॉल के लिए आखिर क्या दलील है? क्या तुम अल्लाह के मुतल्लिक वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो हरगिज़ फलाह नहीं पा सकते। दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में मज़े कर लें, फिर हमारी तरफ इनको पलटना है। फिर हम इस कुफ्र के बदले जिसका वो इर्तकाब कर रहे हैं, इनको सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे। सोचिए ज़रा, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने दुनिया में मज़े किए? आज उनकी कब्रों में क्या है, अल्लाह जाने और वो जाने। अब यहाँ से अम्बिया कराम के किस्से, पीछे सूरत अल आराफ में थे, यहाँ आप देखेंगे कि थोड़ा सा अंदाज़ फ़र्क है। हर नबी का किस्सा एक सबक के साथ। वतलू अलैहिम नबा नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही, आयत 71। इनको नूह का किस्सा सुनाओ, उस वक्त का किस्सा जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए बिरादराने कौम, नोट करें, प्यार से बुलाया करें। दावत देने वालों की ज़ुबानें कड़वी नहीं होनी चाहिए, तानो तंस वाली नहीं। ओ मेरे भाइयों, ओ माई सिस्टर्स, ओ मेरी बहनों, ये स्टाइल है। अगर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की आयात सुना सुना कर तुम्हें गफलत से बेदार करना तुम्हारे लिए नाकाबले बर्दाश्त हो गया है। नोट करें, नूह को भी इस बात का पता था कि लोगों को नसीहत अच्छी नहीं लगती, तंग आ जाते हैं लोग। कहते मौलवियों ने तंग कर दिया है। कहा, अच्छा मेरी बातें सुन के थक गए हो? तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है, तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को साथ लेकर एक मुत्तफिका फैसला कर लो, और जो मंसूबा तुम्हारे पेशे नज़र, इसको खूब सोच समझ लो। कॉन्फिडेंस देखिएगा, हक वाले के पास यही एतमाद होता है। जो मर्जी कर लो, तुम मेरा बाल बीका नहीं कर सकते क्योंकि मेरे साथ मेरा रब है। क्या करो? ताकि इसका कोई पहलू तुम्हारी निगाहों से पोशीदा ना रहे, फिर मेरे खिलाफ इसको अमल में ले आओ और मुझे हरगिज़ मोहलत ना दो। तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मेरा क्या नुकसान? देखिए कितनी जरूरत है लोगों को ये अपना बेनियाज होना सिखा दें, ताकि वो ये ना सोच लें कि इसमें कोई आपका अपना ज़ाती फ़ायदा है। और मैं तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं था, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है। यानी मैं तुमसे क्या मांगता हूँ? पैसे चाहिए, तारीफ़ चाहिए, शोहरत चाहिए, वो तो अल्लाह के हाथ में है। और मुझे हुक्म दिया गया कि ख्वाह कोई माने या ना माने, मैं खुद मुस्लिम बनकर रहूँ। ये है वो चीज़ जो लोगों को कॉन्फिडेंस देगी। आप इसको हाईलाइट कीजिएगा, दूसरों ने बात ना मानी। आपको जुरत कब मिलेगी? जब आप खुद अपने रब की बात मानते रहे। वो कहते हैं ना, इफ़ यू कैंट बीट देम ज्वाइन देम। ये रवैया नहीं होना चाहिए दाई दीन का। आप सब नहीं मान रहे तो फिर हम क्या करें? किसी ने मुझे कहा कि मैं क्लास में थी, वहाँ दर्स हुई, बात हुई, सूद की आयतें पढ़ी, सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद लोग बातें शुरू हो गए, फिर उन्होंने कहा भाई आप बता दीजिए जो दर्स दे रहे हैं, आप बताएं फिर हम क्या करें आज के दौर में ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सच है, लेकिन क्या करें अब आज के दौर में तो नहीं होता, तो आपके आपने लोगों के 2 घंटे क्यों लिए, पहले ही कह देते, एक जुमले में बात समेटते कि सॉरी जो बातें आज हैं कुरान में इस पे अमल नहीं हो सकता, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्लीज़। आपके लोगों का वक्त ज़ाया करते हैं, ये चीज़ है जिसने आज दीन को नुकसान दिया हुआ है। मुझे किसी ने कहा कि दर्स देने वाला जब वहाँ से उठकर लोगों की गीबतें करे तो क्या उसकी बात मानने को दिल चाहता है? बताइए, ये मेरे आप जैसे लोग जो दीन को बदनाम करते हैं ना, फिर लोग वैसे ही नहीं आना चाहते, उनको तो भाना चाहिए तो उनको मिल गया, लोग बातें करें गीबतें करें लोग बुरा नहीं मानते, ये नहीं कहेंगे वो गीबत करता है अच्छा मैं भी ये काम नहीं करता हूँ, फला अच्छे कपड़े पहन के गीबत कर रही थी मैं अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दूँ, कोई नहीं करेगा। दीन वालों की छोटी सी बात भी दुखेगी तो आपने उनको बहाना दे दिया दीन से भागने का, लिहाजा खुद मुस्लिम बन कर रहे, नहीं को मानता तो ना माने, आप तो अपनी माने, और अगर आप खुद नहीं अपनी मान रहे तो किसी को आपकी माननी चाहिए, तो हाईलाइट कीजिए व उमिर तो अनकून अमिनल मुस्लिमीन, सारी दुनिया एक कोने में आप अकेले खड़े हो जाएं कि मैं अपने रब की बात नहीं छोड़ूंगी, फकज़्ज़बू हो। और देखिए जब लोग अल्लाह की मानते हैं ना तो लोग फिर झुटलाते हैं, फिर छोड़ दिया लोगों ने तो छोड़ दें, है क्या उनके हाथ में जो मैं उनसे लूंगी, उन्होंने इसे झुटलाया और नतीजा ये हुआ कि हमने इसे और इन लोगों को जो उनके साथ कश्ती में सवार थे बचा लिया और उन्हीं को ज़मीन में जानशीन बनाया और इन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया था, फंजुर कई फकाना अकीबतुल मुनजरीन, फिर देख लो वो लोग जिनको आगाह किया गया था उनका क्या अंजाम हुआ, यानी उन्होंने मान के ना दिया। हज़रत नूह का कुछ बिगड़ा? 950 साल में 70 से 80 लोग दीन पे आए, अगर आप हिसाब करें ना जमात अपने कैलकुलेटर पे, हर 12 साल बाद एक शख्स मुस्लिम होता दिखता है, क्या हौसले थे। और ये वही जमे का जो अल्लाह के लिए करेगा, जिसको वोट चाहिए हेड काउंट चाहिए वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, मेरा तो मोटिवेशन ख़त्म हो गया, कोई आया ही नहीं, कल आप में से एक भी ना आए इधर तो मेरा मोटिवेशन डाउन होना चाहिए कि ज़्यादा बढ़ना चाहिए, फिक्र लग जाए मुझे कि क्यों नहीं ये आए, कहीं मैं भी तो नहीं अल्लाह की कोई बात मानने से इनकार करके बैठी हुई। तो याद रखिए सच्चा ईमान सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, नबियों का मोटिवेशन कभी डाउन नहीं हुआ था, लोग आए ना आए फ़ायदा ले ना ले। एक और नबी का किस्सा, फिर नूह के बाद हमने मुख्तलिफ पैगंबरों को इनकी कौम की तरफ भेजा और वो इनके पास खुली खुली निशानियाँ लेकर आए, मगर जिस चीज़ को उन्होंने पहले झुटला दिया था इसे फिर मान कर ना दिया, ये स्टबन लोग ना, जो हो गई तो अब हाँ कैसे हो, और इस तरह हम हद से गुजर जाने वालों के दिल पर ठप्पा लगा देते हैं। फिर इनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया। हाईलाइट करें, किसको अल्लाह की बात समझ नहीं आती जो खुद को बड़ा समझता है, मैं इतने बड़े अफसर की बेगम, ग्रेड 17 का अफसर, मैं कुरान पे अमल करूं? नहीं, ये नहीं होता, बस ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलेगी। और वो मुजरिम लोग थे, बस जब हमारे पास से हक इनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया ये तो खुला जादू है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम हक को ये कहते हो जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया, क्या ये जादू है, हालांकि जादूगर फलाह नहीं पाते। قالوا جيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا, देखिए फिर बाप दादा की मोहब्बत सामने आ रही है, उन्होंने जवाब दिया क्या तू इसलिए आया है कि हमें इस तरीके से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया और ज़मीन में बड़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए, तुम्हारी बात तो हम मानने वाले ही नहीं है। और फिरौन ने अपने आदमियों से कहा कि हर माहिर फ़न जादूगर को मेरे पास हाजिर करो, जब जादूगर आ गए तो मूसा ने इनसे कहा तुम्हें जो कुछ फेंकना है फेंको, ये है जुरत, मूसा को पता था मेरे पास हक है, मुझे फर्स्ट टर्न मिले या लास्ट मिले बात मेरी सच होगी। फिर जब उन्होंने अपने अंचर फेंक दिए तो मूसा ने कहा जो कुछ तुमने फेंका है वो जादू है, अभी अल्लाह इसको बातिल कर देता है और मुफसिदों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता, और अल्लाह अपने फरमानों से हक को हक कर दिखाता है, ख्वाह मुजरिमों को वो कितना ही नागवार गुजरे। दुआ करे आज हमें अल्लाह की बात करते हुए इतना ही एतमाद हो, इतनी जुरत के साथ पेश कीजिए इस खूबसूरत हक को। फिर देखो कि मूसा को इसकी कौम में से चंद नौजवानों के सिवा किसी ने ना माना, और आपको पता है ये चंद नौजवान कौन थे, नोट करें, यूथ, बड़े लोगों ने मूसा की दावत को झुठलाया और उन्हीं के बच्चों ने पकड़ लिया, जैसे अल्लाह के नबी के साथ भी हुआ था, अबू जाल ना माना, इकरमा मान गए, अब्दुल्ला बिन उबई नहीं आया तो उनका बेटा अब्दुल्ला आ गया। तो याद रखिए कि यंग्स अपने दिमाग से सोचते हैं, بڑے لوگ خاندانی روایتوں کے نام سے سوچتے ہیں، لہٰذا ان کو حق کم ہی دکھتا ہے۔ پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے، یہ تھا بڑوں کا مسئلہ، ڈرتے تھے، ہائے اب اس عمر میں کیا برے بنے۔ اور خود اپنی قوم کے سربروردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یعنی بڑے لوگ بہت سوچتے ہیں، اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں سوچ لو، پھر کیا ہوگا، رشتے نہیں ہوں گے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، خاندان ٹوٹ جائے گا۔ یاک جائے وہ جیسے گناہ میں بہت بولڈ ہوتے ہیں نا، ایسی نیکیوں میں بھی بولڈ ہوتے ہیں۔ اور واقعہ یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ رکتے ہی نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جو حدوں سے باہر جانے والے ہوں۔ وقال موسیٰ یا قومی، اب یہاں ایک اچھے لیڈر کا کردار، ڈی موٹیویٹڈ ہوئے لوگوں کو موٹیویشن دلا رہے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ یہ تو آج کل آپ اور میں سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں دوسروں کے لیے آزمائش نہ بنا دے، اور ہمارے دین کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو وحی کی، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کر، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دو۔ آج یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صدیوں کی غلام قوم کو نجات کب ملی؟ جب انہوں نے پہلے اپنے گھروں کے قبلے ٹھیک کیے۔ فرعون نے پابندیاں لگائیں، کہا کوئی بڑی بات نہیں، ہم اپنے گھروں میں دین کا کام شروع کر دیں گے۔ آج بھی یہی ضرورت ہے، بڑے بڑے درجے پہ نہ جائیے، چھوٹے لو پروفائل پہ رہتے ہوئے اپنے گھروں کو دیندار گھر بنائیے۔ وقال موسیٰ ربنا، موسیٰ نے دعا کیا، ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال سے نوازا، اے رب، کیا یہ اس لیے کہ یہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ یعنی اللہ، تو نے نان مسلم کو اتنے ریسورسز دیے جن کو یوز کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں، یہ مطلب ہے ادھر۔ اے رب، ان کے مال غارت کر، اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی ہرگز نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ دیکھیے، لا یعلمون، لا یعلمون، بے علم لوگوں کے پیچھے چل کر تو واقعی انسان اپنا بھی نقصان کرتا ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا۔ یہاں بڑی گہری بات ہے، ڈوبتے وقت تو سب کو خدا دکھتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ تیرتے وقت اور خوشیوں میں رب یاد رہے۔ کیا بولا؟ میں نے مان لیا خدا بندے حقیقی، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، ابھی مان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد برپا کرنے والوں میں تھا۔ اب تو ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے رہے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ آج بھی فرعون کی ممی محفوظ ہے، اور جنہوں نے دیکھی ہے، دیکھ کر یہ آیتیں یاد آتی ہیں، عبرت کا نشان، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے۔ فرعون ڈوب گیا تو کیا ہوا؟ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، اور نہایت عمدہ وسائل زندگی ان کو عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو۔ اب سورت کا خاتمہ، انبیاء کے قصے بیان کر کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اور آج مجھے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی تمہیں اس ہدایت والی کتاب پہ شک ہے، تو یاد رکھو، کیا جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، بس تو شک کرنے والوں میں نہ ہو جا، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ حقیقت یہ کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے، کوئی آیت ان کو نکال کے دکھا دو، کوئی اللہ کی پکڑ کی بات کر دو، پھر بھی یہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں، جب گناہوں کا نشہ سر پہ سوار ہوتا ہے نا، تو نصیحت بھی بری لگتی ہے، اور نصیحت کرنے والا بھی برا لگتا ہے، خیر خواہ بھی برے لگتے ہیں، اور خیر خواہی بھی بری لگتی ہے۔ कब ईमान लाएंगे? जब तक के दर्दनाक अजाब सामने आता ना देख लें। जब इन पे कोई आफत आएगी फिर टूटते हैं। फिर क्या ऐसी कोई मिसाल है कि एक बस्ती अजाब देख कर ईमान लाई हो और इसका ईमान इसके लिए नफा बख्श साबित हुआ हो? हाँ, मगर कौम यूनस, यानी कौम यूनस की ये खूबी थी जिसके लिए सूरत का नाम है, इसके सिवा इसकी कोई मिसाल नहीं। वो कौम जब ईमान ले आई थी तो अलबत्ता हमने इस पर दुनिया की ज़िंदगी में रसवाई का जब टाल दिया और इनको एक मुद्दत तक ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। शायद इस वक्त मेरे आपके भी मोहलत के दिन चल रहे हों। अल्लाह ताला में कई बीमारियों से बचा लेता है, कई दफ़ा हादसा होते हुए बचता है। तो इससे पहले कि मोहलत ख़त्म हो हमें अपने रब को लबैक कहना है। अगर तेरे रब की मशीयत से होती कि ज़मीन में सब मोमिन और फरमाबरदार ही हों तो सारे अहले ज़मीन ईमान ले आए होते। फिर क्या तो लोगों को मजबूर करेगा कि वो मोमिन हो जाएं? नहीं कर सकते। कोई मुतनफ़िस अल्लाह के इज़न के बग़ैर ईमान ला नहीं सकता। और अल्लाह का तरीका ये है कि जो लोग अकल से काम नहीं लेते वो इन पर गंदगी डाल देता है। बस तड़पे, दुआ करें, बेहिदायतों को अल्लाह हिदायत दे दे। बस इनसे कहो ज़मीनों आसमान में जो कुछ है इसे आंखें खोल कर देखो। और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते इनके लिए निशानियाँ और तंबी हैं, आखिर क्या फ़ायदा दे सकती हैं? अब ये लोग इसके सिवा और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वही बुरे दिन देखें जिनसे पहले गुजरे हुए लोग देख चुके? इनसे कहो अच्छा इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर जब ऐसा वक्त आता है तो हम अपने रसूलों को और इन लोगों को बचा लिया करते हैं जो ईमान लाए हों। हमारा यही तरीका है, हम पर यह हक है कि मोमिनों को बचाएं। आज भी फितनों के और आजमाइशों के और बेसकूनी के दौर में ईमान वाले ही मुतमईन हैं। दौलत वाले नहीं, औलाद वाले नहीं, माल वाले नहीं, हुसन वाले नहीं, ईमान वाले बचे में, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। ऐ नबी कह दो कि लोगों अगर तुम अभी तक मेरे दीन के बारे में किसी शक में हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बंदगी करते हो मैं इनकी बंदगी नहीं करता, ये जरूरत चाहिए, बल्कि सिर्फ इस अल्लाह की बंदगी करता हूँ जिसके कब्ज़े में तुम्हारी मौत है। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं ईमान लाने वालों में से हो जाऊँ, वनाकिम वजहक लिद्दीन हनीफा, और मुझसे फरमाया गया कि यकसू होकर अपने आप को ठीक दीन पर कायम कर दे और हरगिज़ हरगिज़ नेवर एंड नेवर मुशरिकों में से ना हो जाओ, और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को ना पुकारो जो ना तुझे फ़ायदा दे सकती है ना नुकसान। फ़ाइन फालता, फिर अगर आपने यही कर लिया तो जालिमों में से हो जाओगे। किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला, नबी को। तो आज जो शिर्क करेगा क्या वो बच जाएगा? अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाले तो खुद इसके सिवा कोई नहीं जो इस मुसीबत को टाल दे, और अगर तेरे हक़ में कोई किसी भलाई का इरादा करे तो इसके फजल को फेरने वाला भी कोई नहीं। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता अपने फजल से नवाजता है और वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। आखिरी आयत जो आपको मुझे सिखा रही है, बल्कि दो आयतें, कुल या अय्युहन्नास कद जातकुमुल हक्कु मिन रब्बिकुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है, अब जो सीधी राह इख्तियार करे इसकी रास्त रवि इसके लिए फ़ायदेमंद है, और जो गुमराह रहे इसकी गुमराही इसी के लिए तबाहकुन है। दो टोक बात, शौक़ से दुनिया कमाओ या शौक़ से आखिरत कमाओ, शौक़ से सीधी राह लो या फिर शौक़ से गलत रास्ते पर हो, फिर इंजॉय तो करो। ये बीच की कश्ती पे बैठे हुए तुम्हें दुनिया में भी नहीं मज़े आएंगे और आखिरत भी ख़राब होगी। और मैं तुम्हारे ऊपर कोई हवालेदार नहीं, ऐ नबी तुम इस हिदायत की पैरवी किए जाओ जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए से भेजी जा रही है, और सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला कर दे, और वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। तो ये थी सूरत यूनुस, कितना कुछ मुझे आपको बता गई। पारा असल में यहाँ पूरा हो जाता है। अगली सूरत की पाँच आयतें जो इस सूरत में तर्जमा पढ़ देती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कल का पारा हम सूरत हूद के तारुफ और उसके अंदर जो मज़ामीन है उससे शुरू करेंगे। पढ़ इसलिए रही हूँ कि आपको ये तसल्ली हो जाए कि आपका पारा पूरा हो गया है। सूरत हूद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, हरूफ मुक़त्तात हैं। फरमान है जिसकी आयतें पुख्ता और मुफस्सल इरशाद हुई हैं एक दाना और बाहबर हस्ती की तरफ से, कितना तुम बंदगी करो मगर अल्लाह की, मैं उसकी तरफ से तुमको खबरदार करने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी, और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो। एक दफ़ा शोर से कहिए, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और इसकी तरफ पलट आओ, सब मिलके के अल्लाह हम पलट आए, तो वह एक ख़ास मुद्दत तक तुमको अच्छा सामान्य ज़िंदगी देगा और हर साहिबे फ़जल को इसका फ़जल अता करेगा। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक़ में एक बड़े हौलनाक दिन के अज़ाब से डरता हूँ। तुम सब को अल्लाह की तरफ पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। सच है ना? देखो, ये लोग जो अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि इससे छुप जाएं, खबरदार जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो इन भेदों से भी वाकिफ़ है जो सीनों में हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको अपने दिल के अंदर उठने वाले जज्बात, ख्यालात, सोचों की भी हिफाजत करने वाला बना दे। यहाँ पे पारा पूरा हुआ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।